मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 26 दिसंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे इंटरनेट पर प्रतिबंध, इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। और सच यह है कि आज दूसरी खबरों की संख्या काफी अधिक है। जो पहली खबर है, जो बहुत बड़ी खबर है और अखबारों में आपने आज पढ़ा भी होगा, न्यूज में सुना भी होगा, और वह है NPR को लेकर, जिसे आप फुल फॉर्म में कहेंगे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। अब आप देखें कि इससे पहले कुछ चीजें चल रही थी जिनका लगातार विरोध हो रहा था, और जिसमें NCR और CAA, ये दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। और इसमें एक और मुद्दा अब जुड़ गया है, वह है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। इनफैक्ट सच बात यह है कि जब किसी चीज को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, और प्रस्तुत करने के बाद जब दिमाग आप यूं कह लीजिए कि एक तरह से प्रदूषित हो जाता है या अविश्वास करने लगता है, तो दोस्तों यही स्थिति बनती है जो अभी देश की स्थिति बन गई है। जबकि NCR बिल्कुल अलग है, CAA बिल्कुल अलग है, और अब हम जिसकी बात कर रहे हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये बिल्कुल ही अलग है। नेशनल यानी हमारे देश की जो जनसंख्या है उसका लेखा जोखा लेना, यानी कि रजिस्टर में नोट करना, और इसके बारे में सरकार ने कल बिल्कुल स्पष्ट किया है कि ये जो प्रक्रिया है ये केवल हमारे जो नागरिक हैं उनका एक रिकॉर्ड रखने का है, और जब लोगों के पास जाकर के पूछा जाएगा रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए, तो उन्हें कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं होगा। सरकार जानना चाहती है कि हमारे जो नागरिक हैं अभी कहाँ रह रहे हैं, और जो रहने की अवधि भी है वो 6 महीने की है, ताकि सरकार को पता लगता रहे कि कौन नागरिक कहाँ रह रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली वह प्लान कर सके, योजनाएं बना सके। उसके लिए ऐसा जरूरी होता है, और ऐसा भी नहीं है कि इसे सरकार ने अभी ही लागू करने की सोची है। 2010 में इसे लागू किया गया था, 2015 में फिर इसे अपडेट किया गया, और अब इसे 2020 में फिर से अपडेट किया जा रहा है। लेकिन फिर से एक भ्रम की स्थिति बनती चली जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो NCR है कहीं ना कहीं उसी से इसका जुड़ाव है। हो सकता है NRC जो है, NCR तो NRC जो है उसी उसकी ये पृष्ठभूमि है जो अपने आप में एक प्रकार से कह लीजिए कि भ्रम की स्थिति निर्मित कर रही है। दोस्तों, अब इस पर जो बहस चल रही है, देखिए उसमें एक दो प्रश्न उठाए जा रहे हैं जो थोड़े से यूं कह लीजिए कि बहुत गलत भी नहीं है, क्योंकि जो सरकार की वेबसाइट है उसमें एक लाइन मेंशन किया हुआ है कि यह आगे चल करके जो NRC लागू होगा देश भर में उसकी पृष्ठभूमि का काम करेगी, तो उससे लोगों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो जा रही है। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब हमारा आधार कार्ड बन चुका है और आधार कार्ड में सभी जानकारियां दर्ज हैं, तो क्यों फिर ये अलग से जानकारी लेने की कोशिश हो रही है, इसकी जरूरत ही क्या है, इस तरह से भी प्रश्न उठ रहे हैं। तो अलग अलग तरह के प्रश्न इसमें उठाए जा रहे हैं। फिर 2020 में जनगणना भी होनी है, तो जनगणना से पहले आप ये करा रहे हैं, इसके बाद फिर आप जनगणना कराएंगे, तो अलग अलग इस तरह से कोशिशें क्यों हो रही हैं, क्योंकि समय बर्बाद होता है, उसमें पैसा भी बहुत खर्च होता है देश का। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के विचार किया जाना चाहिए। चूंकि ये एक बहुत बड़ी खबर आज की थी, तो मैंने सोचा कि इधर आप सबका ध्यान डेफिनेटली आकर्षित किया जाना चाहिए। दोस्तों, कल कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, अटल भूजल योजना की। जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, धीरे धीरे उसका लेवल बहुत नीचे होता चला जा रहा है, तो उस वाटर लेवल को संभालने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है। खासकर यह योजना 7 राज्यों में अभी लागू की जाएगी जहां वाटर लेवल सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। ये राज्य आपके दिमाग में होने चाहिए, मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूं, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये 7 राज्य हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 7 राज्यों में ये लागू किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत यही होगा कि किस तरह से पानी का प्रभावी उपयोग किया जाए, जल की सुरक्षा कैसे किया जाए, समुदाय को कैसे इसमें शामिल किया जाए, समुदाय से कहा जाएगा कि वो बकायदे अपना जल बजट बनाएं और टिकाऊ भूजल के लिए प्रबंधन के लिए वो काम करें। तो खासकर इस भूजल योजना से जुड़ा हुआ जो टॉपिक हो सकता है मेन एग्जामिनेशन के लिए, वो है भारत में जो भूमिगत जल है उसकी क्या स्थिति है, उसका वितरण किस तरह से पूरे देश में है और उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है अब तक और आगे क्या किया जाना चाहिए। तो इन बिंदुओं पर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें। इसी के साथ ही दोस्तों, एक रोहतांग दर्रे के नीचे एक सुरंग बनी है, उस सुरंग का नाम अटल टनल रखा गया है, यानी कि अटल सुरंग रखा गया है। कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यह जो सुरंग है 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब बहुत बड़ी बात होती 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। 8.8 किलोमीटर लंबी है, हिमाचल प्रदेश में है और इस सुरंग के बन जाने से मनाली और लेह के बीच की जो दूरी है वो 46 किलोमीटर कम हो गई है। तो प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से थोड़ा सा यह भी जानना आपके लिए उपयोगी होगा। दोस्तों, एक CDS के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसको भी कल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसके बारे में पहले भी कहा था। खासकर ये जो CDS है क्या, देखिए हमारे यहाँ तीन अंग हैं सेना के, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, सबके अपने अपने प्रमुख हैं आप जानते हैं। अब होगा ये कि चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ होगा वो यूं कह लीजिए कि इन तीनों का एक प्रकार से प्रमुख होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उन्हें कंट्रोल करेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो अपने अपनी सेनाओं को कंट्रोल करेंगे, लेकिन इन तीनों के ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा जिसका जो लेवल रैंक होगा वो भारत सरकार के सचिव के स्तर का होगा। और इसके बारे में बहुत सिंपल सी बात आपको ये जानने की, देखिए जब कहीं किसी से युद्ध होता है तो सीधी सी बात है कि इन तीनों को मिलकर के ही उस युद्ध की रणनीति बनानी चाहिए और मुकाबला करना चाहिए। लेकिन पिछले जो हमारे अनुभव रहे हैं वो थोड़े से इस मामले में बहुत अच्छे अनुभव नहीं रहे हैं। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था उस समय वायुसेना को कोई भूमिका नहीं दी गई, जबकि कहा जाता है कि वायुसेना बहुत मदद कर सकती थी। ठीक इसी तरह से 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो उस समय नौसेना का बहुत बड़ा रोल नहीं रहा, और ये नहीं कि वो करना नहीं चाहते थे, उनको उस तरह से शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ें नहीं बताई गई। इसके बाद जब 1999 में जब कारगिल वार हुआ तब इसकी ज़रूरत महसूस की गई कि नहीं नहीं इन तीनों को समन्वित तरीके से काम करना चाहिए। तो वो हो सके इस दृष्टि से अब जो तीनों सेनाएं हैं उनके बीच में प्रभावी समन्वय कायम करने की दृष्टि से अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट बनाई गई है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से ही ये महत्वपूर्ण है। अभी जब नागरिकता रजिस्टर की बात हो रही थी और खासकर नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात हो रही थी, उसके तहत आपने एक शब्द सुना होगा इनर लाइन। इनर लाइन, तो यहां थोड़ा सा मैं आपको इनर लाइन के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि देखिए ये खासकर अंग्रेजों के समय से ही इसकी व्यवस्था की गई थी। 1873 में उन्होंने इनर लाइन की व्यवस्था की थी। खैर हम उसके इतिहास पर नहीं जाना चाहते, आपको केवल ये जानना है कि ये एक तरह की सीमा रेखा है और उस सीमा रेखा के उधर जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को फिर परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। हालांकि वो देश में ही है लेकिन परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। उसके कुछ रीजन है कि वहां के जो लोग हैं उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए और ताकि वहां बाहर के लोग आकर के वहां की जमीन न खरीद सके, तो इस तरह की सरकार ने एक व्यवस्था की हुई है। इंपॉर्टेंट यहां है कि ये जो इनर लाइन है, परमिट सिस्टम होता है यहां, ये हमारे उत्तर पूर्व के चार राज्यों में है। वो चार राज्य आपके दिमाग में होने चाहिए, प्री एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। दोस्तों आज के करंट कंटेंट के तहत एक आर्टिकल डाला गया है जो हिंदू में छपा था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, पोषण के तीन महत्वपूर्ण आधार, है ना। इसे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कुछ आपको नए तथ्य जानने को मिलेंगे। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय है इंटरनेट पर प्रतिबंध। आपने अखबारों में पढ़ा है कि किस तरीके से अभी जब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के देश भर में हड़ताल हुए तो उस समय सरकार ने बहुत जगह इंटरनेट बंद करने का निर्णय लिया, और इससे पहले भी जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त किया गया था तो वहां तो 140 दिन तक लगभग इंटरनेट बंद रहा था। अब सवाल यह है कि क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए? अगर सरकार ऐसा कर रही है तो वो किस अधिकार के तहत कर रही है? दोस्तों, इसके विस्तृत जानकारी के लिए मैं आज आपको बहुत खूबसूरत आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो दैनिक भास्कर में छपा है विराग गुप्ता जी का, और वो बहुत अच्छा लिखते हैं, वो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इसमें आपको बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे, वो आप नोट कर लीजिएगा। उन्हीं तथ्यों को रिपीट करने का यहां कोई मतलब नहीं है। मैं आपको जो सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम है इससे जुड़ा हुआ जो तथ्य है केवल उसके बारे में बताना चाहूंगा जो इसकी पृष्ठभूमि का आपको काम करेगा, इस आर्टिकल को समझने के पृष्ठभूमि का। देखिए, हमारा जो सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम है ये पहली बार 2000 में आया था और बाद में फिर 2008 में इसे संशोधित किया गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अमेंडमेंट 2008 की बात मैं आपको अब बता रहा हूं, और उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है, धारा है, वो है धारा 66 धारा में कंप्यूटर प्रणाली की हैकिंग की बात की गई है, हैकिंग ऑफ कंप्यूटर सेक्शन 66। इसमें 66 ए से लेकर के 66 ई तक की बातें हैं, और वही मैं केवल आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, 66 ए सबसे महत्वपूर्ण है, और जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे दैनिक भास्कर का उसमें इसी का ही उल्लेख आपको मिलेगा, 66 ए। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, कंप्यूटर या अन्य तकनीक के माध्यम से दुर्भावना से प्रेरित, गलत, परेशान करने वाला, धमकी भरा, घृणात्मक तथा प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला संदेश भेजता है तो वह दंड का भागीदारी होगा। देखिए, कंप्यूटर या अन्य तकनीक, तो ये जो अन्य तकनीक है इंटरनेट, इसके अंतर्गत शामिल हो गया। 66 बी में कहा गया है कि कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क से गलत तरीके से सूचना प्राप्त करना या चुराना दंड का भागीदार होगा। 66 सी में है, धोखेबाजी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या निजी पहचान से जुड़ी जानकारी हासिल करके उनका गलत उपयोग करना। 66 डी है, यदि कोई अपनी पहचान छिपाकर किसी अन्य की पहचान का दुरुपयोग करता है, और इसके बाद है 66 ई, यदि कोई व्यक्ति किसी की निजता को भंग करता है तो ये सभी कारावास एवं आर्थिक दंड के भागीदार होंगे। तो दोस्तों, ये है कंप्यूटर प्रणाली की हैकिंग धारा 66। तो इसके 66 के तहत और भी जो दूसरे ए बी सी डी ई के तहत व्यवस्था की गई है उसकी जानकारी मैंने आपको दी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और खासकर अभी इंटरनेट को लेकर के जो बातें चल रही हैं, जो बहस छिड़ी हुई है उसे देखते हुए तो ये और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है मित्रों। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। मुख्य विषय के बारे में फ्रेंड्स बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, वंदना कुशवाहा, मेघा शर्मा, रेणुका कौशिक, समीक्षा सोनी, तरुण अग्रवाल, प्रतीक्षा शुक्ला, प्रेमचंद यादव, श्वेता राज, अनूप राज और उमर खयाम कटिहार बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार, और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।